आचार्य भगवान का समय सार और उसके कर्ता कर्माधिकार के हम 93 नंबर की गाथा पर आए हुए हैं। देखो यहां पर प्रश्न है, पृष्ठ क्रमांक हम 31 पर आए हैं, तो यहां पर यह बता रहे हैं कि व्यवहार रत्नत्रय ने परंपरा कारण कहूं छे ने, ये व्यवहार रत्नत्रय है वो क्या है, राग परिणाम की बात चल रही है और यहाँ तो यह भी बताया गया है कि वह पौद्गलिक है, तो इसलिए ये प्रश्न उठाया गया है कि व्यवहार रत्नत्रय ने परंपरा मोक्षनु कारण कहूं छे ने, परंपरा कारण कहूं छे ने। हा, व्यवहार रत्नत्रय नो शुभ राग ज्ञानी ने मोक्ष नु परंपरा कारण व्यवहार थी कहेल छे। यहां दो बातें हैं, क्या है कि पहले तो व्यवहार रत्नत्रय किसको हो सकता है। हाँ मिली भाई, हाँ यानी जिसके निश्चय रत्नत्रय है उसी के राग परिणाम को, किसके राग, कैसे राग, कि देवगुरु शास्त्र के प्रति जो उसका राग है, राग वर्त रहा है, आदर वर्त रहा है, भक्ति वर्त रही है, उसको व्यवहार रत्नत्रय कहा। तो पहले तो जो ज्ञानी है उसी को व्यवहार रत्नत्रय होगा, इसलिए यहाँ बिल्कुल क्लियर किया है। उत्तर में बताया, हा व्यवहार रत्नत्रय नो शुभ राग, हमने बहुत बार देखा था कि व्यवहार रत्नत्रय यह है, द्रव्य है, गुण है या पर्याय है, तो पर्याय है तो कौन से गुण की पर्याय है, तो वहां हमने चारित्र गुण की पर्याय कही थी, तो इसका यहां बिल्कुल अपने सामने प्रूफ है, क्यों कि इस परिणाम को भी पौद्गलिक परिणाम कहा है। अगर वह श्रद्धा गुण की पर्याय होती तो उसको नहीं कहते। दूसरी बात कि व्यवहार रत्नत्रय नो शुभ राग ज्ञानी ने, यानी जो ज्ञानी है उसी को व्यवहार रत्नत्रय होगा और उसके शुभ राग को, ज्ञानी के शुभ राग को परंपरा मोक्ष का कारण कहा है। तो हम ये सारी बात भूल जाते हैं, कौन सी बीज वाली, कि पहले तो व्यवहार रत्नत्रय किसको होगा वो तो बात मालूम ही नहीं रहती है। देवगुरु शास्त्र के प्रति का राग, यानी हमको व्यवहार रत्नत्रय है और हमें अभी निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय रत्नत्रय प्राप्त करना है, और आगे जो लिखा है ज्ञानी ने परंपरा मोक्षनु कारण छे, तो हम तो ज्ञानी है नहीं और हम भी ऐसा राग करते हैं और वो हमारे लिए मोक्ष का कारण बनेगा, ऐसी मान्यता रखते हैं और उससे ऐसा मानते हैं कि शुभ राग करने से धर्म होगा, ऐसी मीठी मीठी खोटी कल्पना करके लेते हैं। देखो अभी ये क्या करे ऐसी। हाँ जी, मैं समझा नहीं आपका प्रश्न। हाँ 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 लोग ऐसा मानते हैं कि वो श्रद्धा गुण की पर्याय, विपरीत पर्याय है। क्या श्रद्धा गुण की पर्याय? व्यवहार व्यवहार रत्नत्रय वैसा नहीं है। वह सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति की जो राग है उसको यहाँ व्यवहार, क्योंकि वो तो उसको उपचार से रत्नत्रय कहा गया, तो वह तो वास्तविक चारित्र गुण की पर्याय है। हाँ, क्योंकि यहाँ हाँ श्रद्धा गुण की क्यों नहीं है ऐसा आप समझना चाहती हैं। देखो ये विषय क्या चल रहा है इस शास्त्र इस गाथा का, सुनना फिर से मैं बोलूंगा, आप उत्तर मत देना। देखो अभी इसके पूर्व में हमने यही देखा कि जो राग है उसका कर्ता आत्मा है। उसके पहले, बहुत पहले गाथा 50 से लेके 55 तक की डेफिनेटली बात है, उसके आगे भी बहुत वह यही विषय चला है कि वहां तो ऐसा ही कहते हैं कि ये जो राग भाव है वह जीव का नहीं है, वह पौद्गलिक है। फिर बीच में क्या हो गया कि वो विषय से हटकर प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्याय करने के लिए स्वतंत्र है, परद्रव्य इसकी परद्रव्य की पर्याय नहीं करता है, इसलिए वहां विकारी भाव का भी जीव को कर्ता कहने में आया। क्यों? कि उसका लक्ष्य परद्रव्य से हटकर स्वद्रव्य पर आए। अभी जब स्वद्रव्य पर आया यह जीव, तब कहते हैं कि तेरे शुद्ध स्वभाव में राग उत्पन्न होवे ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है, राग नाम का कोई गुण ही नहीं है। ये तेरा जो शुद्ध स्वभाव है जो ज्ञानी जीव अनुभवते हैं उसमें राग का वेदन नहीं होता है, उसको राग का पता ही नहीं लगता है उसको, क्योंकि वो त्रिकाली स्वभाव में है ही नहीं। लेकिन अभी पर्याय में तो है ना? हाँ है, पर्याय में है, लेकिन वह जीव पुद्गल की तरफ देखता है तब उसको इस तरह के परिणाम होते हैं, इसलिए वो पौद्गलिक है। ऐसा कहा एक बात कि ज्ञान जो है, ज्ञान में राग नहीं है और राग में ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान और राग दोनों भिन्न है, ये बात नक्की की। अब कहते हैं ज्ञान यानी चेतन स्वरूप है, और ज्ञान जो राग जो है ना तो स्वयं को जानता है ना पर को जानता है, ज्ञान तो स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है, इसलिए वह अचेतन है, जड़ है, इसलिए उसको पुद्गल कहा। अब ये सारी बात कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो हम देखते हैं राग का परिणाम कहा किसको? व्यवहार रत्नत्रय को। तो अभी हम उसको किसके खाते में जमा करेंगे? तो फिर श्रद्धा गुण का सवाल ही नहीं आया। यहां अभी वो विषय चल रहा है। क्या है कि जहां जिस अपेक्षा से जो कथन किया होगा उसको समझना अपना कर्तव्य है। तो कहते हैं हा व्यवहार रत्नत्रय नो शुभ राग ज्ञानी ने मोक्ष नो परंपरा कारण व्यवहार थी कहल जे। वो भी जो कथन है वह भी उपचार का कथन है, वह वास्तविक यानी सच्चा निश्चय का कथन नहीं है। एनो अर्थ ए थयो के व्यवहार रत्नत्रय मोक्ष मार्गनु वास्तविक कारण नथी। अभी हम थोड़ा सा और आसान करके देखेंगे। तो जब भी हमने उनको राग का परिणाम कहा है, किसको? व्यवहार रत्नत्रय को। तो वो सात तत्वों में कौन सा तत्व होगा? बोलो जय में। आश्रव तत्व होगा, ये तो बात निश्चित है ना। तो आश्रव तत्व है, तो आश्रव तत्व और संवर तत्व भिन्न है क्या? एक ही है। हाँ भाई, अलग अलग है ना। किसी घर में सात बच्चे होंगे, लड़के एक ही घर के हैं, फिर भी सबके नाम जुदे जुदे हैं। क्यों? अरे वे जुदे ही हैं। वैसे सात तत्व जो हैं उनके नाम जुदे हैं। क्यों? क्योंकि उनके सबका स्वभाव कहो, स्वरूप कहो, जुदा जुदा ही है। तो हम क्या मानते हैं कि आश्रव करने से संवर होगा, नहीं समझ में, शुभ राग करने से धर्म होगा, क्योंकि संवर किसको कहा है, शुद्धि की उत्पत्ति को संवर कहा और शुभाशुभ विकारी भावों को आश्रव कहा। अब यहां तो अशुभ को तो विकारी कहे तो कोई बांधा नहीं है, शुभ को भी विकारी, हाँ हाँ शुभ को भी विकारी, तो शुभाशुभ भाव जो है वह विकारी परिणाम है, उससे अविकारी दशा प्राप्त हो जाए, ये कैसा बनेगा, ख्याल में है ना। तो अभी हमने क्या देखा था, सात तत्वों के भी तुलना से हम देखते हैं तो यह परंपरा मोक्ष का कारण कहा गया है वह भी उपचार से कहा है, वास्तविक ये तो बंध ही होने वाला, अल्प लेप अभी बात चली थी ना, उनके लिए भी बंधन का कारण है। और मिथ्या दृष्टि के राग को धर्म का कारण, अरे वाह रे वाह, और मुनि के बंध का कारण, आप बात ख्याल, देखो हमारा तो ऐसा नसीब अच्छा है कि समय सार और प्रवचन सार के विषय साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे को हम उदाहरण के साथ सिद्ध कर सकते हैं। देखो हमारी पहले ऐसी मान्यता नहीं थी कि जरा आप सोचना, कि हमने तो जाके भगवान के दर्शन किए तो बस ऐसा हो गया कि बस और बस बहुत धर्म हो गया, वो फला फला उपवास करे तो और क्या बात, फिर वो ऐसा क्या क्या व्रत होते, मैं नाम भी नहीं जानता हूँ, कि हर शुक्रवार को या हर इतवार को ऐसे कितने इतने 25 इतवार करने के या ऐसा कुछ कितने होते हैं, हाँ रविवार व्रत कितने, 81, अच्छा 81 यानी 52 और डेढ़ महीना समय, डेढ़ साल जो भी होता होगा, पौने दो साल, हर इतवार को जो कुछ करने का है, कोई एकासन करता है, कोई उपवास करता है, जो भी करता है, उसमें धर्म किया हमने ऐसा मानते थे। उसके पहले दिन और दूसरे दिन डबल खावे वो भूलने का बच्चे होते हैं तब तो माँ जबरदस्ती, अरे बेटा कल तेरा उपवास है, आज खा ले खा ले खा ले, और जब जवान हो जाते हैं तो अपना ही पेट बूम मारता है तो हम डबल खा लेते चलो जाने दो। तो अपनी बात क्या हो रही थी, ये जो व्यवहार रत्नत्रय यानी राग स्वरूप जो कोई है वह परंपरा मोक्ष का कारण किस लिए कहा है, तो वो भी बताएंगे, जो कुछ कहा है वो व्यवहार से उपचार से कहा है, वास्तविक वो नहीं है फिर भी उसको कहने में आया, क्यों कि वो साथ साथ रहता है इसलिए। देखो एनो अर्थज ए थयो के व्यवहार रत्नत्रय मोक्ष मार्ग नु वास्तविक कारण नथी, रागती भिन्न पड़ी ने पोताना न्यायक स्वरूप नो जेने अनुभव थयो छे एवा समकीति धर्मी जीव ने शुभना काले अशुभ टळे छे अने स्व आश्रय स्वाश्रय तेनो शुभ टळी ने शुद्ध दशा प्रकट थशे, ए अपेक्षाए ज्ञानी ना व्यवहार रत्नत्रय ने मोक्षनु परंपरा कारण व्यवहार थी कहेल छे। यहाँ एक पॉइंट और एक आपके ख्याल में आया होगा, यहाँ पर ये बता रहे हैं क्या कि जब कोई जीव अपने शुद्धोपयोग में जाता है तो शुद्धोपयोग के पूर्व में यानी उसके पहले शुभोपयोग ही होता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि अशुभोपयोग में से जीव एकदम फट से शुद्धोपयोग में चला जाए, इसलिए उसके पहले वो रहता है और शुद्धोपयोग से बाहर निकले तब भी शुभोपयोग होता है, इसलिए उसको भी उपचार से मोक्ष का कारण का है। वैसे अभी हम थोड़ा सा बहुत करणानियों का अभ्यास करते हैं, ये तो ये शुभोपयोग स्वरूप जो कोई जीव का जीव की परिणति चल रही है वो तो 10वें गुणस्थान तक ही है, 12 में कोई राग नहीं है, 13 में नहीं है, 14 में नहीं है और फिर मोक्ष होता है, तो इसको भी क्यों कह रहे हैं कि साथ में रहता है ना, इसलिए जैसा देखो शादी में भी वर बैठता है तो साथ में अनवर भी होता है, तो उसको अनवर ही कहते हैं ना, क्या कहते हैं, तो उसको अनवर क्यों कहे, वो तो 2-3 साल का बच्चा रहता है, उसको कौन वर करेगा, उसको कौन वरेगा, फिर भी वो साथ में है तो उसको अनवर भी कहेंगे, आप में नहीं होते तो उसी को कहेंगे, बेसमेंट, बेसमेंट नहीं नहीं अच्छा, गुजराती के अनवर अलग है, यहाँ के अलग है। हाँ चलो, वैसा ये बेस्टमैन है कौन, शुभ भाव आपके हिसाब से? देखो, यथार्थ सिद्धांत आ एकज छे के व्यवहार थी निश्चय न था। क्या कहा? यथार्थ छे सिद्धांत केम के व्यवहार नो शुभ राग अचेतन छे, पुद्गल ना परिणाम रूप छे, ते भगवान चैतन्य स्वरूप आत्मानी निर्मल परिणति नु कारण थाय, एम बनी शके नहीं, ते ज्ञान मा निमित्त छे अने ज्ञान तेनु जाननार छे, एवु ज्ञान नु स्वपर प्रकाशक सहज सामर्थ्य छे। हवे कहे छे, ज्यारे ज्ञानी ने लीधे आत्मा, ज्ञान ने लीधे आत्मा ते राग द्वेष सुख दुखादीनो अने तेना अनुभवनो परस्पर विशेष जाणतो होय, त्यारे तेवो एक नथी पण भिन्न छे। तेवो यानी किसको लेना नलिन भाई? हाँ, यहाँ ज्ञान और राग द्वेष सुख दुखादी के परिणाम बहुत अच्छा। हाँ, तो तेवो एक नथी पण भिन्न छे, एवा विवेक ने लीधे शीत उष्णनी माफक जेमना रूपे आत्मा वड़े परिणमव अशक्य छे, यानी यह आत्मा कभी भी शीत या उष्ण रूप परिणमित नहीं हो सकता, क्योंकि वह परद्रव्य की पर्याय है। इसी तरह ये राग द्वेष रूप भी यह जीव कभी नहीं परिणम सकता, क्योंकि वह पौद्गलिक है। एवा राग द्वेष सुख दुखादि रूपे आना अज्ञान आत्मा वड़े जराय नहीं परिणम तो थको, ज्ञाननु ज्ञानत्व प्रकट करतो, पोते ज्ञानमय थयो थको, आ हूँ राग ने जाणु छू, रागी तो पुद्गल छे, अर्थात राग तो पुद्गल करे छे, इत्यादि विधि थी ज्ञानती विरुद्ध एवा समस्त रागादि कर्मनो अकर्ता प्रतिभासे छे। ये तो टीका में से लिया हुआ, अभी उसका एक्सप्लेनेशन देते। भेद ज्ञान थवाथी धर्मी जीव राग द्वेष सुख दुख नी कल्पना अने ज्ञान ए बे वच्चे नु परस्पर अंतर जाने छे। ये क्यों जानता है? कि भेद ज्ञान थवाथी, ये भेद ज्ञान थवाथी पेलो धर्मी थई गयो छे। हवे कहे छे कि तेथी ए बन्ने नी तफावत जाने छे, बन्ने वच्चे नु परस्पर अंतर जाने छे। जुओ, सुंदर युवान स्त्री ने देखी अज्ञानी राग करे छे अने तेमां आनंद माने छे, ज्यारे ज्ञानी ने एवा प्रसंग में राग थाय तेनो खेद थाय छे। देखो, आप जरा मार्क करना, हमेशा ज्ञानी और अज्ञानी के परिणति का हमेशा तुलना की गई है। वहां तो अज्ञानी खुश खुश होता है, आनंदित होता है, और इस राग सम्यक दृष्टि के ऐसा ही राग आता है पर पदार्थों के प्रति, लेकिन उसके लिए उसको खेद वर्तता है। खरेखर ज्ञानी ने तो ए राग ज्ञान मा निमित्त छे, ज्ञानी तो जाने छे क्या राग दुख रूप छे, इंद्रियों ना विषयों थी निवृत्त न हो एवा ज्ञानी ने चारित्रना दोष थी राग आवे छे, पांचमा गुणस्थान सुधी रौद्र ध्यान पण थाय छे। ये रौद्र ध्यान क्या होता है मालूम है? क्या है ना, रश्मि रश्मि बेना, हाँ हाँ, क्रोध आता है। अच्छा, आपको मालूम है सौभाक्षण? हाँ, रौद्र ध्यान यानी क्या है ऐसा मैं पूछता हूँ। आप कहते हाँ अब यहाँ कहते हैं पंचम गुणस्थान वर्ती को भी रौद्र ध्यान होता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी शांति रखो, आपको समझ में आएगा। आप जितना बोलोगी उतने आप गलत गलत रास्ते में जा रही हैं। हाँ, आपने एक बात बताई कि वो चार प्रकार के होते हैं, ये चार प्रकार के ध्यान होते हैं या चार प्रकार के रौद्र ध्यान होते हैं, ये मैं पूछूंगा आपसे। ध्यान चार प्रकार के होते हैं या रौद्र ध्यान चार प्रकार के होते हैं? अच्छा, हमने पूछा था रौद्र ध्यान किसको कहेंगे, है ना? कोई बात नहीं। हाँ बोलो साहब, कषाय भाव को। हाँ मम्मी बोलो। मुरुषानंदी, तो नाम बताएं आपने। देखो, पाप करते हुए आनंद का अनुभव करना, हिंसा करे और आनंद मानना, चोरी करे और आनंद मानना, खोटा बोले और आनंद मानना, परिग्रह रखे और आनंद मानना, इसको रौद्र ध्यान कहेंगे। उसके नाम अभी आपने सुने, हिंसा नंदी यानी। हाँ जी, हाँ। तो हिंसा करे, ये पतौड़ी का नवाब क्या कर रहा है? हिंसा करे और आनंद माने, पकड़ा गया बेचारा, अभी भागा किधर मालूम नहीं। हम मिल गया जाने। आप कहते हैं ये कोई ऐसा कोई उत्सव होता है, उस वक्त बकरे को काट के खाते हैं, तो वो भी क्या है? हिंसानंदी है, रौद्र ध्यान वाले जीव हैं। वैसे अन्य में चोरी करे और उसमें ये बीएसटी बस में चोरी करते हैं ना, पर्स फाड़ते हैं, इसलिए तो हमारी प्रभाव भी आना बंद हो गया। हाँ, उसका पर्स दो बार काटा, वैसे ही वो आपरती थी ताकि कोई हाथ नहीं लगावे। अच्छा है, झूठ बोल के, अरे हमने तो ऐसा रिटर्न्स भरा है डॉक्टर, कि वो क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर का बाप भी आवे तो नहीं पकड़े पाएगा। झूठ सारा लिखे और आनंद माने, ऐसा सब में समझना, इतना सारा परिग्रह जमा किया, आनंद आनंद, अरे हमारा पास अटला छे अटला छे ना अटला छे। हाँ, तो ये हो गया रौद्र ध्यान। अभी सुनना यहाँ क्या कह रहे बहन, मैंने ये बताया कि ये नीचे से दूसरा पैराग्राफ, उसमें नीचे से दूसरी लाइन, पांचवा गुणस्थान सुधी, तो पंचम गुणस्थान वर्ती कहो, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती कहो, वो ज्ञानी है कि अज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? तो मिथ्या सम्यक दृष्टि ने पण रौद्र ध्यान पण थाय छे, तो रौद्र ध्यान पण नो अर्थ शू थयो? के आर्त ध्यान पण होय छे। आर्त ध्यान कहाँ तक, कौन से गुणस्थान तक होता है मिली भाई? छठे, कौन से, चारो? हाँ, एक होता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ चलो चलो, अभी क्या कहते हैं, परंतु रौद्र ध्यान ना परिणाम ज्ञान करावामा निमित्त छे, क्योंकि वो एक प्रकार के भी ऐसे भाव है ना, विपरीत भाव है, तो वो भी ज्ञान होने में निमित्त है, वो है इसलिए ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, आवी वात लोगों ने सांभळवा मळी नथी एटले नवी लागे, पण आ काई नवी नथी, अनादिथी मार्ग चालो आव्यो छे, तेज आ वात छे। अरे प्रभु, तू चैतन्य नो नाथ छो, तेने तारी पर्यायमा पधरावने, तो कोने पधरावा कहे छे? रौद्र ध्यान ने, हे मम्मी ना पड़े छे, कोने पधरावा मांगे छे? हाँ दिव्याबेन, हाँ डॉक्टर क्या कह रहे, शुद्धात्मा ने क्या लिखा, देखो देखो देखो, अरे प्रभु तू चैतन्य नो नाथ छो, तेने तारी पर्याय में पधराव ने, यानी कभी तूने अपने स्वभाव का अनुभव किया है नहीं, क्योंकि जैसा तू है वैसा तूने कहाँ माना है, तू तो चैतन्य नो नाथ छो, चैतन्य नो स्वामी छो, चैतन्यमय छो। भगवान एमा तारी शोभा छे, केमा के जेवु स्वरूप छे एवी रीते परणमवुं, एमा तारी शोभा छे, અને એમાં તને આનંદ થશે. ભગવાનને તું અંતરમાં બેસાડ. અજ્ઞાનીને અનાદિથી પરી, એ તો કહેને કી બાત હૈ હો કે ભગવાનને અંતરમાં બેસાડ. એ મેં જુદા હું ઓર વો ભગવાન જુદા હૈ ઉસકો ઉઠા કે યહાં સ્થિર કરના, એસા કુછ નહીં હૈ. અરે જો હૈ વહી મેં હું એસા એગ્રી હોના હૈ, એસી શ્રદ્ધા કરની હૈ, એસા જ્ઞાન કરના હૈ. તો કહેને મેં જરૂર આયેગા ભગવાનને તું અંતરમાં બેસાડ, કેમ કે હજી સુધી તું એનાથી ભિન્ન છો એવું જ માન્યું છે તે. અજ્ઞાનીને આના, કયું કે હમ બોલતે ને આત્મા કાંઈ બતા બતા બતા. અરે તું સ્વયં આત્મા હૈ ઓર તુઝકો યે આત્મા કાંઈ બતા ને, કેસા હૈ તો એને કે અંદરમાં બેસાડ. અજ્ઞાનીને અનાદિથી પર્યાય ઉપર દ્રષ્ટિ છે, તેથી તેને શુદ્ધ ચૈતન્ય તત્વનો ત્રિકાળી દ્રવ્યનો મહિમા આવતો નથી. પણ પ્રભુ તું શુદ્ધ ચૈતન્ય સિંધુ જ્ઞાનનો દરિયો છો, તેમાંથી તો જ્ઞાનની પર્યાય ઉછળે. નદીમાં તરંગ ઉઠે તો પાણીના તરંગ ઉઠે, કોઈ રેતીના તરંગ ઉઠે, કાંઈ રેતીના તરંગ ઉઠે, તેમ જ્ઞાનનો દરિયો પ્રભુ આત્મા છે. તેમાં તો જ્ઞાનની પર્યાયના કલ્લોળો ઉછળે, તેમાંથી રાગની પર્યાય ન ઉછળે. આવું જ વસ્તુનું સ્વરૂપ છે. સૂક્ષ્મ તો છે પ્રભુ, પણ શું થાય, માર્ગ તો આ છે. અનંત તીર્થંકરે કહ્યો છે તે માર્ગ દિગંબર સંતોએ જગત સમક્ષ જાહેર કર્યો છે. સંતો ભગવાનના આડતિયા થઈને આ માલ તારા માટે લાવ્યા છે. પ્રભુ તારી મહત્તા તો તું દેખ. જગતમાં અનંતા રજકન અને અનંતા જીવ છે. પ્રત્યેક રજકન અને પ્રત્યેક જીવ પ્રત્યેક સમયે અનંત ગુણપર્યાય સહિત છે. તેની સત્તાનો સ્વીકાર કરે તેવી જ્ઞાનની એક સમયની પર્યાયની અદ્ભુત તાકાત છે. જેની એક સમયની જ્ઞાનની પર્યાયનું આવું અચિંત્ય સામર્થ્ય છે. અચિંત્યને જીસકા હમ ચિંતા મતલબ ઉસકે બારે મેં કોઈ સોચ નહીં સકે, એસી અમાપ અથાહ સામર્થ્ય હૈ. તે આત્મા તો ત્રિકાળી જ્ઞાનનો પિંડ પ્રભુ છે. દ્રષ્ટિ અપેક્ષાએ તો એક સમયની પર્યાય નથી, તેવો એકલો પરમ પરિણામિક ભાવરૂપ તેનો સ્વભાવ છે. દેખો દ્રષ્ટિ અપેક્ષા એને ક્યાં હૈ, ત્રિકાળી જબ હમ સ્વભાવ કી અપેક્ષા કરતે હૈં, યાને દ્રવ્ય કો દ્રવ્ય કી અપેક્ષા સે દેખતે હૈં, તો વહ દ્રષ્ટિ અપેક્ષાએ તો એક સમયની પર્યાય નથી, યાને ઉસમે એક સમય કી પર્યાય નહીં હૈ, તેવો એકલો પરમ પરિણામિક ભાવરૂપ તેનો સ્વભાવ છે. દેખો દેખો યહાં જરા ગડબડ મત કરના, યાને જો ત્રિકાલી સ્વભાવ હૈ ક્યા વહ પર્યાય સે સહિત હૈ યા રહિત હૈ, એસા પ્રશ્ન ઉઠતા હૈ ક્યા? ત્રિકાલી સ્વભાવ યહાં તો કહેતે પર્યાય થી રહિત, તો ક્યા વાસ્તવ મેં વો પર્યાય થી રહિત હૈ, એસા ભી પ્રશ્ન ઉઠતા હૈ ઓર ઉસમે ભી બહોત ઝઘડેબાજી ચલતી હૈ. દેખો જો દૃષ્ટિ કા વિષય હૈ વહાં એક સમય કી પર્યાય ભી વહાં વિદ્યમાન નહીં હૈ, એસા જો દ્રવ્ય હૈ ઉસકો દૃષ્ટિ કા વિષય કહા. લેકિન વહ દ્રવ્ય મે સાથ મે વર્તમાન પર્યાય મૌજૂદ હૈ, પણ ઉસકો ગૌણ કી ગઈ હૈ ઓર હમ કિસી પર્ટિક્યુલર પર્યાય કા હમ નામ લેતે તો વહાં ભેદ હો ગયા. ये द्रव्य किसको कहेंगे, तो द्रव्य तो असंख्य प्रदेशी है. अपन जीव की बात कर रहे हो, उसमें अनंत गुण है और अनादि काल से अनंत काल तक की पर्यायों का समूह ऐसा द्रव्य है. अब जब हम उसको एक एक असंख्यात प्रदेशी कहा तो उसका भेद किया हमने, તો વહાં પર ભી જો ઉસ સમય જો દ્રવ્ય હૈ, દ્રવ્ય કભી ભી પર્યાય રહિત હોઈ નહીં સકતા હૈ. લેકિન ઉસ પર્યાય કે સાથ વાળા દ્રવ્ય કહેંગે તો વહાં ભેદ હો ગયા, દો ડિવિઝન હો ગઈ ના. તો વહાં તો દ્રષ્ટિ કા વિષય મેં તો ત્રિકાલી દ્રવ્ય હી લેના, લેકિન વહાં જો પર્યાય હૈ પર્યાય પર નજર ગઈ તો હમારા દ્રવ્ય પર સે દ્રવ્ય નજર હટ ગઈ ના, તો ઉસકો નહીં લેના. ખ્યાલ મેં તો એ બાત આપ અગર કોણ સી પુસ્તક હૈ વો દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ डॉक्टर साहब की कौन सी पुस्तक है? दृष्टि नो विषय, दृष्टि का विषय, वो पढ़ना बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत सॉलिड है। यानी वो पढ़ते पढ़ते तो दिमाग एकदम आउट हो जाता है, एकदम गहरा विषय उन्होंने लिया है और बहुत अच्छी तरह से समझाया है। एक ध्यान रखना कि कभी भी द्रव्य पर्याय रहित होगा ही नहीं। तो ऐसा अगर हम मानते तो फिर वेदांती जैसा हो गया, पर्याय रहित द्रव्य। या अभी अनेकांत की बात आने वाली है ना कल प्रवचन सार में, फिर देखो। तो यहां तो कह रहे दृष्टि का विषय है, वो तो त्रिकाली स्वभाव, त्रिकाली स्वभाव में कोई पर्याय नहीं है। क्यों? कि पर्याय तो हर समय पलटती है और स्वभाव तो त्रिकाली एक जैसा है, इसलिए उसको उसमें शामिल नहीं किया। लेकिन शामिल नहीं किया यानी है तो सही ना, शामिल कहां किया है, तो है, उसको नहीं शामिल किया, उसको गौण किया है, उसको निकाल बाहर नहीं किया है, होते हुए को नहीं देखा है, ऐसी बात है। चलो अब यहां क्या कहते हैं, तो सूक्ष्म कहां तक आए थे, ज्ञान नो प्रभु आत्मा जी तेमा ज्ञानी परे न उल्लो जी राग नहीं पर्याय न उछड़े वगैरह हो गया। सेकंड पैराग्राफ दिगंबर संतो है, वो हो गया पूरा। चलो चलो जाने दो, तीसरी सेकंड पैराग्राफ में तीसरी लाइन से पढ़ता हूँ। ये आप ही बताए ना, भगवान संतो भगवान आड़तिया थी ने आ माल तारा माटे लाया छे, प्रभु तारी महत्ता तो तू देख, जगत में अनंता रजकणों रचकण अने अनंता जीव छे, प्रत्येक रचकण अने प्रत्येक जीव प्रत्येक समय अनंत गुण पर्याय सहित छे। ये रजकण में भी अनंत गुण पर्याय है और इसमें भी है। तेनी सत्तानो स्वीकार करे तेवी ज्ञाननी एक समयनी पर्यायनी अद्भुत ताकत छे, जेनी एक समयनी ज्ञाननी पर्यायनु आवो अचिंत सामर्थ्य छे, ते आत्मा तो त्रिकाली ज्ञाननो पिंड प्रभु छे। यहाँ यहाँ तक आए थे, दृष्टि अपेक्षा है तो एक समयनी पर्याय नथी, तेवो एकलो परम पारणामिक भाव तेनो स्वभाव छे। औदयिक आदि जे चार भावो छे तेमा कर्मना सद्भावनी वा अभावनी अपेक्षा आवे छे। औदयिक आदि चार भाव यानी कौन से, ये हमारे प्रतिभा है हाँ, ये हाँ, वो कहाँ पूछा हमने, हमने चार ही पूछा। हाँ देखो यहाँ लिखा है ना, औदयिक आदि जे चार भावो छे, अभी वहां क्या कहना चाहते हैं, तेमा कर्मना सद्भावनी वा अभावनी अपेक्षा आवे छे। तो अभावनी अपेक्षा कया भाव में आवे छे, बोलो मम्मी, गलत है आपका, बोलो, नहीं मालूम, सभा के ना बताएंगे, क्षायिक भाव और पारिणामिक भाव को कर्म की अपेक्षा ही नहीं है बहन, एकदम, क्योंकि स्वभाव को किसी परद्रव्य की कर्म की निमित्त की संयोग की कोई अपेक्षा नहीं है। ऐसा जो स्वभाव भाव है उसी को पारिणामिक भाव का है। कि अभी तो मेरे ख्याल से हमको पहले से अभी लेना पड़े, ऐसी बात हो गई है, क्योंकि ये बात हम नहीं समझते तो खाली पट डालने में कोई मजा नहीं है, इसलिए मुझे बार बार ऐसे बारीक बारीक बातों को बीच में अटकना पड़ता है, तो मुझे अच्छा लगता है। क्या है, औदयिक आदि ये चार भावो छे तेमा कर्मना सद्भावनी, यानी औदयिक भाव, औपशमिक भाव और क्षायोपशमिक भाव, इसमें कर्मों की सद्भाव है, कर्म वहां है हाजिर। और क्षायिक कब होता है, कि सारे कर्म हट जाते हैं, निकल जाते हैं, निर्जरित हो जाते हैं, तब तो क्षायिक भाव प्रकट होता है। तो वहां कहते तेना सद्भावनी व अभावनी अपेक्षा आवे छे। पांचमो पारिणामिक भाव छे ते परम निरपेक्ष छे, तेमा निमित्तनी अपेक्षा नथी। आवा स्वभावनु भान थईने जेने भेद ज्ञान थयुं ते धर्मी ने ज्ञान पर्यायमा सहज स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य घटे छे, तेने तीर्थ रक्षानु તેને સ્વપર પ્રકાશક સામર્થ્ય પ્રગટે છે, તેને તીર્થરક્ષાનો જે અનુરાગ થાય તે રાગ તેના જ્ઞાનમાં નિમિત્ત છે, તે રાગ પુદ્ગલ સાથે અભિન્ન છે અને તે સંબંધી જે જ્ઞાન થયું તે જ્ઞાન આત્માથી અભિન્ન છે. જ્ઞાનીને જે અનુરાગ થયો તે જાણેલો પ્રયોજનવાન છે. બસ જ્ઞાનીને દયાદાન વ્રતાદિનો રાગ હો, એ રાગ આવે તે કાંઈ ધર્મ નથી. કહા ના ક્લિયર? એ રાગ તો જ્ઞાનમાં જાણવા લાયક છે, એ રાગ જ્ઞાનથી ભિન્ન છે. અભી વહાં હમને 12મી ગાથા મેં પઢા થા ને, જાણેલો પ્રયોજનવાન છે અને જાના હુઆ પ્રયોજનવાન. એ રાગ જ્ઞાનથી ભિન્ન છે અને પુદ્ગલથી અભિન્ન છે. નિશ્ચયથી આત્માનો જ્ઞાયક સ્વભાવ છે, તેથી અનંત શક્તિઓ શુદ્ધ અને પવિત્ર છે. પવિત્રતાપને પરણવું તે શક્ય છે, પણ રાગ અને વિકાર કે જે પુદ્ગલ પરિણામ છે તે રૂપે આત્મા વડે પરણવું અશક્ય છે. દેખો દેખો ક્યા કહે રહે હૈ, આત્મા મેં અનંત ગુણ હૈ, શક્તિઓ. યહાં શક્તિ અને ગુણ કી અપેક્ષા સે લિયા હૈ, તો વો અનંત ગુણ કૈસે હૈ, શુદ્ધ ઔર પવિત્ર હૈ. અભી ક્યા કહેતે હૈ, શુદ્ધપણે યાને પવિત્રતાપણે શુદ્ધપણે પરણવું તે શક્ય છે, પણ રાગ અને વિકાર જે પુદ્ગલ પરિણામ છે યાને યહાં રાગ રૂપે જીવનું પરણવું અશક્ય છે એમ બતાવે છે. મુનિ દશામાં જે પંચમહાવ્રતાદિના રાગ આવે છે તે દ્રવ્યલિંગ છે, જેમ નગ્ન દશા એ જડની દશા છે અને તે દ્રવ્યલિંગ છે, તેમ પંચમહાવ્રતાદિના પરિણામ પણ દ્રવ્યલિંગ છે, તે આત્માની પર્યાય નથી. દેખો યહાં જો સબસે બઢિયા ઉત્તમ શુભ પરિણામ હૈ ઉસકો ભી યહાં પૌદ્ગલિક કહેને મેં આયા હૈ. તે દ્રવ્યલિંગ પણ આત્મા વડે પરણવું અશક્ય છે. ગજબ વાત છે ભાઈ, આ સમજવા માટે ખૂબ ધીરજ જોઈએ અને સમજીને અંતર્મુખ થવામાં અનંત ગુણો પુરુષાર્થ જોઈએ. અહો આચાર્ય દેવે કેવી અલૌકિક વાત કરી છે. દેખો યે તો નહી બાત હૈ બિલકુલ, યહાં જો વિષય ચલ રહા હૈ ઓર ઉસકે અનુલક્ષ્ય સે યે બાત બતા રહે હૈ. યહાં તો હમને દ્રવ્યલિંગ દ્રવ્યલિંગ યે તો બાત જો બાહ્ય નગ્ન દશા હૈ ઉસકો દ્રવ્યલિંગ બહોત બાર સુના હૈ. યહાં તો આચાર્ય કહે રહે હૈ, સ્વામીજી હમે બતા રહે હૈ કે યે જો ભાવ નિકલ રહે કૌન સે પંચ મહાવ્રત પાલન કે જો 28 મૂલગુણ પાલન કરને કે જો શુભ રાગ હૈ ઉનકો ભી દ્રવ્યલિંગ કહા હૈ. યે બહોત ગજબ કી બાત હૈ. યે તો અભી તક કભી મતલબ મેરે તો દિમાગ મેં બૈઠી નહીં થી બાત, અભી 2-3 બાર મેં પઢા થા, લેકિન યહાં જો બાત બતાઈ વો તો અભી શુભ પરિણામ ઉનકો ક્યુંકિ વો જડ હૈ ઓર વો નગ્ન દિશા બાહ્ય મેં દિખ રહી હૈ, વો ભી જડ કી અવસ્થા હૈ, યે ભી જડ કી અવસ્થા હૈ, દોનો જુડવા ભાઈ હૈ, જાઓ. ખ્યાલ મેં ઉસ અપેક્ષા સે કહે રહે. દેખો 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 ફિર સી પેરેગ્રાફ પઢુંગા, મુઝે બહોત અચ્છા લગા. મુનિ દશામાં જે પંચ મહાવ્રતાદિનો રાગ આવે છે તે દ્રવ્યલિંગ છે, જેમ નગ્ન દશા એ જડની દશા છે અને તે દ્રવ્યલિંગ છે, તેમ પંચ મહાવ્રતાદિના પરિણામ પણ દ્રવ્યલિંગ છે, તે આત્માની પર્યાય નથી, તે દ્રવ્યલિંગ પણ આત્મા વડે પરણવું અશક્ય છે. ગજબ વાત છે ભાઈ, આ સમજવા માટે ખૂબ ધીરજ જોઈએ અને સમજીને અંતર્મુખ થવામાં અનંત ગણો પુરુષાર્થ જોઈએ. અહો આચાર્ય દેવે કેવી અલૌકિક વાત કરી છે. રાગથી ભિન્ન પડીને સ્વભાવ સન્મુખ થવું અને સ્વભાવને રાગથી અધિક જાણવો તે સમ્યક જ્ઞાન છે. અધિક એટલે ભિન્ન અને એનાથી વિશેષ જુદો, એવી રીતે ચૈતન્ય સ્વભાવથી વિભાવને અધિક ભિન્ન જાણવો, અધિક એટલે ભિન્ન જાણવો તે આત્માનો માર્ગ છે. ગાતા 17-18 માં આવે છે કે આ અબાળ ગોપાળ સૌને જ્ઞાનમાં પોતાનો આત્મા જણાઈ રહ્યો છે. જ્ઞાનની પર્યાયનો સોપર પ્રકાશકપણાનો સ્વભાવ છે, તેથી જ્ઞાનની પર્યાયમાં પોતાનો દ્રવ્ય સ્વભાવ અનુભવવામાં જાણવામાં આવે છે. પરંતુ અજ્ઞાનીની દૃષ્ટિ પોતાના ત્રિકાળી દ્રવ્ય સ્વભાવ ઉપર જતી નથી, રાગ અને વ્યવહાર ઉપર એની દૃષ્ટિ રહેલી છે. તેથી આ રાગને હું જાણું છું એમ ભ્રાંતિથી તે જાણે છે. અહીં તો જ્ઞાનીની વાત છે, ધર્મી સમકીતીની દૃષ્ટિ દ્રવ્ય સ્વભાવ ઉપર સ્થિર થઈ ગઈ છે, તેથી તે જ્ઞાન સ્વભાવ રૂપે પરિણમે છે, તે રાગની પરિણતિથી ભિન્નપણે પરિણમે છે. આ શરીર તો જડ માટી છે, મસાણમાં હાડકાં છે, અને અંદર જે શુભરાગ અને પુણ્યના પરિણામ થાય તે પૂતગલ પરિણામ છે એમ જ્ઞાની જાણે છે. કોઈને બેસે ન બેસે તે જુદી વાત છે, યાને કિસકો એ એક્સેપ્ટ હોવે યા નહીં હોવે, મંજૂર હોવે યા નહીં હોવે, બેસે યાની ઉસકે દિમાગ મેં એ બાત ફિટ હોવે યા નહીં હોવે. પરંતુ રાગ તે પૂતગલના પરિણામ છે, કેમ કે તે જ્ઞાન સાથે તન્મય નથી પણ જ્ઞાનથી ભિન્ન છે. રાગ જે છે તે જ્ઞાન સાથે તન્મય નથી પણ જ્ઞાનથી ભિન્ન છે. તે જ્ઞાનની પર્યાયમાં પોતાનું દ્રવ્ય જણાય છે, પરંતુ અજ્ઞાનીની દ્રવ્ય ઉપર દૃષ્ટિ નથી. અજ્ઞાનીની દૃષ્ટિ અનાદિથી રાગ અને પર્યાય ઉપર પડી છે. એટલે મેં દયા પાડી, મેં વ્રત કર્યા, મેં ભક્તિ કરી, મેં પૂજા કરી એમ જાણતો તે પોતાને એકલો પરપ્રકાશક માને છે. સ્વપરપ્રકાશક જ્ઞાનને એકલું પરપ્રકાશક માને તે મિથ્યાત્વ છે. રાગને માનવો અને સ્વભાવને ન માનવો તે એકાંત મિથ્યાત્વ છે, મિથ્યા ભ્રાંતિ છે. એ જૈસા એકાંત મિથ્યાત્વ બતાય ને, તો ઓર ભી કોઈ મિથ્યાત્વ કે પ્રકાર હૈ ક્યા? હા રશ્મિબેન બોલો બોલો, કિતને હૈ ટોટલ? પાંચ, બહોત અચ્છા, બોલો બોલો. હા વિપરીત, સંશય, દો હો ગયે, એકાંત, અચ્છા હા હા, તીન તીન, હા વિનય મિથ્યાત્વ, ઓર કોણ સા રહે ગયા? અજ્ઞાન મિથ્યાત્વ. યે દેખો યે બાત મામૂલી સી લગતી હૈ લેકિન યે જબ તક હમ ધ્યાન મેં નહીં રખતે હૈ ના બેન, તબ તો સ્વાધ્યાય કા મજા નહીં આતા હૈ. એસા નહીં સમજના કે આપકો ભી મેં પકડ રહા હું, લેકિન મેં તો ચાહતા હું ઇસ બાતો કા આપકો ભી જ્ઞાન હોવે, આપકો કહીં ચોટ એસી બેઠે કે આપ ઘર મેં જાકે ભી પડે. ક્યું પ્રતિભા થઈ? પહેલે તો હમ કુછ નહીં જાણતે થે, અભી જરા જરા જાણને લગે તો આનંદ આતા હૈ કે દુઃખ હોતા હૈ? બહુત આનંદ આતા. યે એસા નહીં સમજના હો કે મેં આપસે પૂછતા હું ઇસલિયે આપ નારાજ નહીં હોના. યહાં જીતને લોગ બેઠે ના સબસે પૂછના, મેં સબકો પૂછ પૂછ કે પૂછું, ઉનકો ઉગી હૈ અભી. દેખો દેખો એકાંત મિથ્યાત્વ છે, મિથ્યા ભ્રાંતિ છે. અરે પ્રભુ તું કોણ છો? આહા હા, અનંત ગુણોથી અવિનાભાવી જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્મા છો. ક્યાં કહા? અનંત ગુણોથી અવિનાભાવી જ્ઞાન સ્વરૂપ છો, યાને દેખો આત્મા જ્ઞાનમ સ્વયં જ્ઞાનમ એસા કહેતે હૈ, તો આત્મા યાને જ્ઞાન, જ્ઞાન યાને આત્મા, એસા નહીં હૈ. તો ઇસમે આત્મા મે અનંત ગુણ હૈ, ઓર વે કૈસે હૈ? અવિનાભાવી હૈ, યાને જહાં જ્ઞાન હૈ વહાં દર્શન હૈ, જહાં દર્શન હૈ વહાં ચારિત્ર હૈ, એસા સબ એક સાથ, સબ એક સાથ આનંદ ગુણ કે સાથ એક દૂસરે સે અવિનાભાવી સંબંધ હૈ. યાને એક ગુણ હૈ તો અનંત ગુણ વહાં હોંગે હોંગે હોંગે, લેકિન યહાં જ્ઞાન કો મુખ્ય કરકે આત્મા હી જ્ઞાન હૈ ઓર જ્ઞાન હી આત્મા હૈ એસા કહેને મેં આતા હૈ, ક્યોંકિ જ્ઞાન હી સ્વ કો ભી જાનતા હૈ ઓર પર કો ભી જાનતા હૈ. એસે આત્મા મેં આનંદ ગુણ હૈ વો સ્વ કો ભી જાને ઓર પર કો ભી જાને, એસા હોય નહીં, હોયગા હી નહીં, ખ્યાલ મેં? ઇસલિયે હમેશા જ્ઞાન કો રિપ્રેઝેન્ટ કરકે આત્મા ઓર જ્ઞાન એક હૈ એસી બાત બતાતે હૈ. તો યહાં દેખો ક્યા કહેતે હૈ, स्वामी जी जाते जाते एक ऐसी चपराक मारते हैं कि वो ध्यान में आते आते टाइम लगता है। क्या कहा देखो, अरे प्रभु तू कौन छो, ये हम स्वयं कौन है, ऐसे हमारे अंदर में जागृति तो आ जाए। तो कहे कि अनंत गुणों थी अविनाभावी ज्ञान स्वरूप आत्मा छो, ज्ञान थी अविनाभावी अनंत गुणों नो। ये हमको आदत कैसी लगी मैं एक बात बताना चाहता हूं। ये हमारे नेमा काका थे ना, तो कभी कभी ऐसे मूड में आवे तो पूजा भी सिखाते थे। तो एक कौन सी पूजा है इसमें, एकांत विपरीत ऐसा वो कौन सी पूजा है जो, हाँ जी ये अपने हम रोज पूजा बोलते हैं ना, उसमें ये एक बात आती है
उसमें नहीं, वो तो द
हाँ जी
हाँ
नहीं उसमें हमने देखा
वो
नहीं
वो भावना है ना, वो को एक ही भावना इसे कुछ हो तो उसमें आता है
वो एकांत विपरीत ऐसा कुछ
कुनय के।
हाँ
एकांत विपरीत कुनय के
वो जुदा
उसमें आता है। ये
तो वो ऐसा बोलते थे, हम ये जिंदगी भर ऐसा बोलते रहे लेकिन ये एकांत है ये है वो तो हमने उसको हमारा बाप ने पण खबर नहीं थी कि आना ना कोना मटे नाम लखेला छे। लेकिन अभी मुझे ये वो अपने बाप के नाम लेते थे, तुम्हारे बाप के ऐसा नहीं बोलते थे। तो हमको भी लगता था कि अरे हम तो ये रोज पढ़ते हैं, इसका भाव क्यों नहीं भाषण होता है, ये क्यों नहीं बात समझ में आती है। तब से आदत लग गई है कि ऐसी कोई बीच में बात आई तो वहां रुके, उसका एक्सप्लेनेशन समझ ले और फिर आगे बढ़े। अभी वो मुझे क्या कहते हैं वो कभी पूजा याद नहीं आ रही, कल मुझे याद आएगी तो मैं बताऊंगा आपको, यानी देख के बताऊंगा, अभी टाइम नहीं है, नहीं तो अभी बता देता। वो यहाँ नहीं है, मैं दूसरी कुछ बात बताना चाहता हूँ। अभी उज्ज्वला ने वही बात बताई आप जो कहना चाहती है वो, अरे आलोचना वाट वाली बात नहीं है ये, मेरे ख्याल से जाने दो, मैं बताऊंगा कल आपको। तो ये जो मुझे आदत जो लगी ना, अनंत गुणों थी अविनाभावी ज्ञान स्वरूप आत्मा जो, ऐसा तो हम पढ़ जाते हैं लेकिन ये इसका कोरिलेशन लगाएंगे तो आत्मा में अनंत गुण है ये हम जो भूल जाते थे, क्योंकि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा और ज्ञान एक है, ज्ञान वही आत्मा है तो बाकी गुण नहीं है। अरे ये मेरी बात नहीं, आगे चल के जब हम ये समय सार पूरा करेंगे तो उसके ऊपर तो अमृत चंद्राचार्य ने 14-14 कलश लिखे हैं कि आत्मा अकेला ज्ञान नहीं है और ज्ञान यही आत्मा नहीं है, क्योंकि पहले तो वही 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 बात बताई तो सबके दिमाग में वो फिट बैठा। तो बोलते नहीं आनंद गुण है उसमें, आगे ज्ञान थी अविनाभावी अनंत गुण नो पिंड प्रभु तू आत्मा छो, आवा शुद्ध चैतन्यमय आत्मा नी जेने दृष्टि थई छे ते ज्ञानी नु परिणमन ज्ञानमय छे, तेने जे राग थाय छे तेने ज्ञान जाने छे एम केवूं ए व्यवहार छे। क्या कहा यार, तो समझ में आया लक्ष्मी बेन? देखो देखो फिर से ये सेकंड लाइन से पढ़ता हूँ। हाँ मैं ज्ञान थी अविनाभावी अनंत गुणनो पिंड प्रभु तू आत्मा छो, यानी ज्ञान में ज्ञान के साथ अनंत गुण जो है ये सारे एक दूसरों से लगते हुए एक हैगा तो दूसरा होगा ही होगा, ऐसा इनमें अविनाभावी संबंध है, ऐसा तो आत्मा अनंत गुणों का पिंड प्रभु तू छो, आवा शुद्ध चैतन्य में आत्मा ने जेने दृष्टि थई छे यानी जिनके उनका अनुभव हुआ है ते ज्ञानी नु परिणमन ज्ञानमय छे, जानने का कार्य तो ज्ञान से ही होता है, तेने जे राग थाय छे तेने ज्ञान जाने छे एम केवू ते व्यवहार छे, खरेखर पोतानु ज्ञान थयू त्यारे ते पर्यायमा स्वपर प्रकाशकपनानु सामर्थ्य प्रकट थयू तो राग ज्ञान मा जणाई जाय छे। अभी ये मैं बात यहां तक बताना चाहता था, थर्ड लाइन में तेने जे राग थाय छे तेने ज्ञान जाने छे एम केवू ए व्यवहार छे। देखो ये मैं इसलिए पॉइंट पर रुका हूँ, ये इसमें भी बहुत लोगों की भ्रांति चल रही है और आपस में झगड़े भी चल रहे हैं कि जीव पर को जानता ही नहीं है, वो पर को जानना ये व्यवहार है, तो व्यवहार ये झूठा है, इसलिए ऊपर को जानता ही नहीं है। तो सर्वज्ञ की यहाँ खच्ची कर दी। सर्वज्ञ किसको कहेंगे कि जो स्व को भी जाने और पर को भी जाने। अभी यहाँ क्या कहना चाहते हैं, देखो देखो, तेने जे राग थाई छे तेने ज्ञान जाने छे। अभी वास्तव में ज्ञान तो अपने पर्याय को जानता है, यह निश्चय है, और राग को जानता है, भेद करके दो अलग बातें बताई, इसलिए वह व्यवहार कथन हो गया। एक ही चीज को भेद करके कथन करना वह व्यवहार कथन है। जानने की क्रिया तो निश्चय से हो रही, किसको, पर को। यहाँ राग को पर कहा गया है और स्व को स्व कहा गया है, तो वो पर को जानता है ऐसा कहना ये व्यवहार है। देखो देखो, तेने जे राग थाई छे तेने ज्ञान जाने छे एम कहवू, ये न तो ज्ञान में होते या कथन में होते हैं, वस्तु में कोई नई नहीं है। लेकिन हम वो बात भूल जाते, देखो आइए लख्यू छे ने, व्यवहार छे व्यवहार छे, व्यवहार तो बधु सगड़ो अभूतार छे, असत्यार छे, ऐसा करके उसको पलटा देते हैं, उड़ा देते हैं। सूक्ष्म दृष्टि वाले हैं ना। अभी आगे उसका उत्तर दिया है उन्होंने, खरेखर पोतानु ज्ञान थयू त्यारे पर्याय में स्वपर प्रकाशपणू सामर्थ्य प्रकट थयू, तो राग ज्ञान में जणाई जाय छे। ज्ञान राग ने जाने छे ए उपचार कथन छे। वास्तविकता वास्तविक तो ए छे के स्वपर प्रकाशक पर्याय ने पोते जाने छे, यानी ज्ञान स्वपर्याय को ही जान रहे, और उस स्वपर्याय में सारी दुनिया झलक रही है। ज्ञान ने राग एक समय में एक साथे उत्पन्न थाई छे, त्या हूँ राग स्वरूप छू एम अज्ञानी माने छे, मानी ले छे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में चौथा अधिक मार्ग में कहूं छे के जे समय ज्ञान उत्पन्न थाई छे ते समय राग उत्पन्न थाई छे, बन्ने नो एक काल छे, तो अज्ञानी ने एम भासे छे के राग मारी चीज छे, बेना भाव भिन्न छे, एवं तेने भान नथी। ये मिथ्यात्व क्यों हो रहा है, दोनों एक समय में ही उत्पन्न हो रहे हैं, और ज्ञान में स्वपर प्रकाशक जानने की शक्ति है, यहाँ स्व यानी स्व को और पर यानी राग को, ये दोनों ही बातें एक साथ जानने में आती है, तो उसको ऐसा लगता है अज्ञानी को कि मैंने राग किया, क्योंकि ज्ञान में आ रहा है ना, तो मैंने नहीं तो किया तो क्या तो दूसरे किसी ने किया, ऐसा भी झगड़ता है वो। तो कहते हैं बनने नो एक काल छे, तो अज्ञानी ने एम भासे छे, एटले एम जाणवा जणाय छे, जाणवामां आवे छे के राग मारी चीज छे, बेना भाव एटले बे एटले ज्ञान अने राग ए बन्ने ना भाव भिन्न छे एवू तेने भान नथी। अहो कुंद कुंद आचार्य देवे जगत ने न्याल करी दीदू छे, तेवो श्री विदेह मां साक्षात सदेह पधार्या था। आ वात 85 का है, षटपाहुड़ अने दर्शनासार आ त्रणे शास्त्रों मां छे। भगवान कुंदकुंद आचार्य विदेह क्षेत्र मां सिमंदर भगवान ना समोसरण मां गया था, अने त्यांथी आवीने आ समयसार आदि शास्त्रों नी रचना करी छे। आ वात प्रमाणभूत अने परम सत्य छे। आई कहे छे के राग थी भिन्न पड़ी ने जेने भेद ज्ञान प्रकट कर्यू छे ते ज्ञानी राग द्वेष सुख दुखादि अने तेना अनुभव नो परस्पर विशेष जाने छे। के ये राग और ये ज्ञान, ये दोनों का विशेष यानी दोनों में भेद है, अंतर है, डिफरेंस है, ये जाने छे, परस्पर बनने नु अंतर जाने छे। पोतानो स्वभाव ज्ञान छे अने रागनो स्वभाव जड़पणु छे, पोते आत्मा त्रिकाल सत्ता रूप छे अने राग एक समयनु अस्तित्व छे, पोते नित्यानंद स्वरूप प्रभु छे अने राग दुख रूप छे। ये कितने पॉइंट बताए, हाँ चार। अच्छा बोलो बेन, चार कौन से बोलो, देख के बोलना। हाँ हाँ एक पॉइंट हो गया ना। कितने हो गए पॉइंट? तीन। अभी बिना देख के कौन बताएगा? आप बताएंगे बहन? समय नो छे। और तीसरा, मैं स्वयं सुखरूप हूँ और राग दुखरूप है। ये पढ़ते 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 हमारा ख्याल ऐसा होना चाहिए, नहीं तो तुम ही करा वट वट हामी आए राम भट, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं समझे तुम? अरविंद भाई नहीं समझे? तुम ही करा वटवट, बोले तो तुम जो बोलना है सो बोलो, हम है राम भट, बोले हम तो बस अपने ही में मस्त है, आपको जो पढ़ना है आपकी खुशी के लिए पढ़ते जाओ, हमें क्यों तकलीफ करते हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं त्रिकाल हूँ, मैं नित्य आनंद स्वरूप हूँ, यह हमारी बात हो गई। और वह जो राग है वह जड़ है, एक समय पुरता है और दुख स्वरूप है। ये वेद ज्ञान करने के लिए ये बातें जो यहाँ बताए रहे हैं हमारे स्वामी जी, वो हम जब तक ग्रहण नहीं करेंगे तब तो फिर बस पहले पन्ने से दूसरे पन्ने पे। आ प्रमाणे ज्ञानी परस्पर बनने नु अंतर जानी ले छे, जाने छे। राग ती भिन्न भगवान आत्मा ने जहाँ स्वलक्ष्य अनुभव अनुभव्यो त्या ज्ञान राग ती भिन्न पड़ी गयो, आनु नाम भेद ज्ञान ने सम्यक दर्शन छे। आमा वाद विवाद करे अने सत्य ने असत्य करीने स्थापे, अने असत्य ने सत्य करीने स्थापे, एना फलमा दुख थशे, दुखना संयोगो बहु कठन पड़शे भाई। राग ने भगवान आत्मा एक नथी, जेम अड़दनी दाळ अने ऊपरनू फोतरू एक नथी, एम आत्मा ने राग एक नथी। ये समझ में आया? अड़दनी दाळ तो आप तो गुजराती लोग तो समझ सकेंगे, उड़दाची दाळ, और उसके ऊपर का जो कवर है छिलका वो काला है और अंदर की दाल उससे सफेद है, ख्याल में? तो कहते हैं कि वो जैसे दोनों जुदे जुदे हैं, कि दाल और अड़द की दाल और उसके ऊपर का छिलका, एम आत्मा ने राग एक नथी। भगवान आत्मा एकला आनंदनु दल छे, आनंदनु दल ने आनंदनु पिंड, दल एटले चारे बाजू थी एकदम घट घण जेवु होय, अने राग खोतरा समान छे, बन्ने भिन्न छे। आत्मानी ज्ञान पर्याय अने तेज काले उत्पन्न थयेली जे रागनी पर्याय, ते बन्नेनु परस्पर अंतर जाणतो ज्ञानी, परने पोता रूप जाणतो नथी अने पोताने पर रूप जाणतो नथी। यहाँ पर याने यहाँ ये राग भाव, राग थी दृष्टि उठावी लीधी अने भगवान आत्मा ऊपर दृष्टि स्थापी, एनु नाम विवेक एटले भेद ज्ञान छे, अने ते वड़े धर्म छे। कहियू छे ने के धर्म विवेके उपजे जो करिए तो थाय, यानी तुम विवेक करो तो ही वह तुम्हें धर्म प्राप्त होगा। अभी ये आगे की बात हम कर लेंगे, और चाहते हो तो ये पूरा पैराग्राफ दोबारा पढ़ेंगे जैसा आप कहो। जावानी के ज्ञान तय सूझे लो कालो, सोवानी मस्त कर्ण सदा देत हो। नरेंद्र